ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा से शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2081 सर्वसम्मति से पारित। 25 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी करते हुए सगरमाथा संवाद संपन्न। जलवायु परिवर्तन का हिमालय पर प्रभाव के विषय पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउवा का कथन। अख्तियार द्वारा मध्य प्रदेश के तत्कालीन आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार सहित 8 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। 7 किलो 653 ग्राम सोना सहित रसुआ में एक व्यक्ति गिरफ्तार। और भारत के हैदराबाद में एक इमारत में आग लगने से हुई 17 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2081 सर्वसम्मति से पारित किया गया। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री रघुजी पंत द्वारा प्रस्तुत किए गए शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न इस विधेयक को प्रतिनिधि सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान उठे मुद्दों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री पंत ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने और लागू होने के बाद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय शिक्षा और स्वास्थ्य का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि पहली बार 2 मंत्रियों शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को सहकुलपति बनाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही खुली और आंतरिक प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दी जाएगी और संविधान द्वारा स्थापित समानुपातिक समावेशी सिद्धांत का व्यावहारिक क्रियान्वयन होगा। शिक्षा मंत्री पंत ने कहा कि विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ सहयोग किया जाएगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 स्तरीय सरकारों के बीच समन्वय मजबूत होगा। चर्चा में सांसदों ने कहा कि ये विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा का हब बन सकता है और एक विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में अनुसंधान केंद्र की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। सांसदों ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय को संरचना मात्र नहीं बल्कि उद्देश्य के अनुरूप आगे बढ़ाना चाहिए और इसे राजनीतिक भर्ती का केंद्र नहीं बनाने देना चाहिए। इसके अलावा बैठक में संस्कृति पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे द्वारा प्रस्तुत किए गए नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2081 और नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2081 को धारावार चर्चा के लिए संबंधित समिति को भेजा गया। बैठक में सभामुख देवराज घिमिरे ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के कार्यालय से प्राप्त बैंकिंग अपराध तथा सजाए द्वितीय संशोधन विधेयक के प्रमाणीकरण संबंधी पत्र को पढ़कर सुनाया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। रसुआ में पुलिस ने सेब के कंटेनर में छुपाकर तस्करी किए जाने की अवस्था में सोना बरामद किया है। जिला प्रहरी कार्यालय रसुआ की टोली ने आज केरुंग नाके से सेब लेकर आ रहे कंटेनर में फसल बॉटम में छुपाकर लाए जाने की अवस्था में 7 किलो 653 ग्राम सोना बरामद किया है। ये जानकारी रसुआ के प्रहरी प्रमुख DSP हेम बहादुर शाही ने दी। सोने के साथ कंटेनर चालक रसुआ गोसाईकुंड के 25 वर्षीय किशोर कुमार भुजेल को गिरफ्तार किया गया है। इस विषय में अतिरिक्त अनुसंधान चल रहा है। ये बात जिला प्रहरी कार्यालय के सूचना अधिकारी इंस्पेक्टर राजू शाह ने बताई। उन्होंने बताया कि सोने की बिस्किट की जांच चल रही है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार सहित 8 लोगों के खिलाफ करीब 30 करोड़ भ्रष्टाचार करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आयोग के प्रवक्ता राजेंद्र कुमार पौडेल के अनुसार सरलाही की बागमती नगरपालिका वार्ड नंबर 4 और 12 में सागरनाथ वन विकास परियोजना के तहत वन क्षेत्र पर अतिक्रमण और वन उत्पादों की अवैध खुदाई कर करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आयोग के अनुसार तत्कालीन मंत्री विजय कुमार सहित अर्थ मंत्रालय और जनकपुर धाम के पूर्व कानून अधिकृत गोकुल भुजेल के खिलाफ लगभग 30 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला दायर किया गया है। इसी तरह बागमती नगरपालिका के तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, उप प्रमुख लीला कुमारी मुक्तान और पूर्व मुख्य प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेल के खिलाफ 56 करोड़ 71 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया गया है। तत्कालीन इंजीनियर निरंजन लामिछानी के खिलाफ 10 करोड़ 14 लाख 75 हजार रूपये, तत्कालीन इंजीनियर सागर पौडेल के खिलाफ 46 करोड़ 56 लाख रूपये से अधिक और तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल के खिलाफ 56 करोड़ रूपये से अधिक के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाल सरकारद्वारा आयोजित सगरमाथा संवाद के दौरान 25 बिन्दु वाला सगरमाथा कार्य आह्वान जारी किया गया, जो आज काठमांडू में संपन्न हुआ। सगरमाथा कार्य आह्वान ने पूर्व औद्योगिक काल की स्थिति 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि न होने देने की आवश्यकता को पुनः पुष्टि की है। कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउवा ने कहा कि हिमालय और मानवता के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता के साथ सगरमाथा संवाद सफल रहा। संवाद के समापन समारोह को संबोधित करते हुए परराष्ट्र मंत्री डॉ राणा ने कहा कि ये संवाद मानवता के लिए हिमालय के योगदान, जलवायु परिवर्तन के हिमालय पर पड़े प्रभाव और इसके संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में सफल रहा। उन्होंने कहा कि सगरमाथा संवाद ने दुनिया भर के नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और मानवता को बचाने के लिए एक साथ लाने में मदद की है। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु वित्त में देरी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का वित्तीय और तकनीकी सहयोग आवश्यक है। सरकार ने जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों पर पड़ रहे प्रभाव को वैश्विक स्तर पर उजागर करने के लिए जेट 2 गति से काठमांडू में जलवायु परिवर्तन, हिमालय और मानवता का भविष्य विषय पर सगरमाथा संवाद का पहला संस्करण आयोजित किया था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से आज संयुक्त राष्ट्र के फंड फॉर रेस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज के कार्यकारी निर्देशक इब्राहिम चौधरी डियोंग ने शिष्टाचार भेंट की। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ओली ने सगरमाथा संवाद के पहले चरण में भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यदि हिमालय और पर्यावरण की रक्षा नहीं हुई तो मानव जीवन असुरक्षित हो जाएगा, इसलिए विश्व समुदाय का इस ओर ध्यान जाना चाहिए। कुछ बड़े धनी देशों द्वारा पेरिस समझौते से पीछे हटने की कोशिश पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल में स्थित सगरमाथा और हिमालय की रक्षा न केवल नेपाल बल्कि पूरे विश्व के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि वैदेशिक सहायता में कटौती के कारण नेपाल का मातृबाल तथा नवजात शिशुओं की जीवन रक्षा संबंधी कार्यक्रम दुष्प्रभावित हुआ है। सहायता की निरंतरता के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ समेत अंतर्राष्ट्रीय दात्री निकायों से आग्रह किया है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 78वीं सभा शुरू होने से पहले आयोजित मंत्री राउंड टेबल विमर्श कार्यक्रम में मंत्री पौडेल ने कहा कि सहयोग की कटौती ने चुनौती कर दी है। ये जानकारी उनके निजी सचिवालय ने दी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि देश समृद्ध होने के लिए राजनीतिक स्थायित्व जरूरी है। आज लमजुंग की बेशी शहर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 स्थित जिला समन्वय समिति लमजुंग में आयोजित निकपा एमाले लमजुंग के 9वें जिला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद की प्रथम बैठक समापन कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि एमाले सरकार में रहकर काम कर रही है, फिर भी गलत प्रचार करके एमाले पर प्रहार किया जा रहा है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि उनकी पार्टी का ध्यान सरकार गिराने की ओर नहीं है। जनता के साथ माओवादी लोक पहाड़ी लोकमार्ग जनता जागरण अभियान अंतर्गत आज दैलेख में आयोजित सभा में अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही। इस दौरान ये कहते हुए कि सरकार गलत रास्ते पर चल रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि माओवादी द्वारा शुरू किए गए कामों को भी मौजूदा सरकार भांप रही है। बैतरी जिले में रेबीज के टीके की कमी के कारण मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के सूचना अधिकारी हरीश पंत के अनुसार पिछले 3 हफ्तों से अस्पताल में रेबीज के टीके उपलब्ध नहीं है। जिले के 3 स्थानों जिला अस्पताल पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज के टीके लगाए जाते हैं, लेकिन अभी यहां भी टीकों की कमी बनी हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस नाम की एक इमारत में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल है। घटना पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया गया है। साथ ही पीएमओ ने बताया परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। राज्य के उप मुख्य मंत्री भट्टी विक्रममार्क मल्लू ने घटना पर बात करते हुए मीडिया को बताया कि जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई है सरकार उनके परिवार को 5 लाख रुपए की मदद देगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार घायल लोगों के इलाज का सारा खर्च उठाएगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंतिम बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा से शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2081 सर्वसम्मति से पारित। 25 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी करते हुए सगरमाथा संवाद संपन्न। जलवायु परिवर्तन का हिमालय पर प्रभाव के विषय पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। परराष्ट्र मंत्री डॉ राजू राणा देउबा का कथन। अख्तियार द्वारा मध्य प्रदेश के तत्कालीन आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार सहित 8 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। 7 किलो 653 ग्राम सोना सहित रसुआ में एक व्यक्ति गिरफ्तार और भारत के हैदराबाद में एक इमारत में आग लगने से हुई 17 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।